نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خلاصہ قرآن کے سلسلے میں پندرہویں پارے کا دوسرا روپ ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 49 سے. پیچھے وہی بات چل رہی ہے، نشانیوں کا مانگنا، اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ مطالبے ہیں، یہ دے دو وہ دے دو، یہ نہیں کرتے تو وہ کر دو. بالکل اسی ٹیکسٹ کو سامنے رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین دلا رہے تھے، لیکن نہ ماننے والے الٹی سیدھی باتیں کر رہے تھے. تو فرمایا انہی کا قول، وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. اور وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی یہ کیسی بات ہے، از ہاؤ از اٹ پاسبل؟ ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی بن جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں ہے، قبول حیات سے بعید تر ہو تو پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. یا نوٹ کیجئے گا، لوہے کی بھی بات ہو گئی، ہڈیوں کی، لیکن اس سے بھی بڑھ کر کیا، یہ جو بعد کے دور میں ایجاد ہونے والی دھاتیں ہیں جیسے سٹیل ہے، فولاد ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو لوگوں کو سوچنے کی دعوت دی گئی کہ آنے والے وقت میں کچھ ایسی چیزیں اور بھی ڈسکور ہو سکتی ہیں جو کہ آج موجود نہیں ہیں. تو فرمایا کہ تمہیں کیوں فکر ہے، تم پتھر کے بن جاؤ، لوہے کے بن جاؤ، اس سے بھی زیادہ کوئی سخت چیز جو تمہارے ذہن میں ہے کہ جو زندگی کو قبول کر سکتی ہے، اس سے بھی بہتر ہو جاؤ، لیکن تم پھر بھی اٹھا کے رکھ جاؤ گے، تمہیں کھڑا کیا جائے گا، اور وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا. جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. سچ ہے کہ نہیں؟ پہلی دفعہ نہیں مشکل تھا تو دوبارہ کیسے مشکل ہوگا؟ وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے، اچھا تو یہ ہوگا کب؟ یعنی یقین نہیں آ رہا نا، تو پہلے تو پوچھا کیا ہوگا، پھر کہتے اچھا جی اب یہ کب ہوگا. جیسے کسی کو کوئی کام کہا جائے تو اچھا چلیں اب بتائیں پھر ہونا کب ہے، اب ہمیں بتا دیں ہم نے کیا کرنا ہے. یعنی اس طرح کا سٹائل کہ جس میں دل نہ مان رہا ہو لیکن مجبوراً بندے کو ہاں کہنی پڑے. تم کہو کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو. ہوگا کیا اس کی فکر کرو، بہت زبردست دن ہوگا. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ وتظنون ان لبثتم الا قلیلا. اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے. یہ وہ دن ہوگا کب، جس روز وہ تم کو پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ بس ہم تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے. یہ ہے اصل بات، اس وقت تمہیں زندگی بہت تھوڑی لگے گی. ہائے اس کے لیے تھے. کل کا ایک جملہ میرے ذہن میں گھوم رہا ہے جس میں کہانی سنائی گئی تھی مرنے کے بعد کے بارے میں، تو کسی نے ایک بڑا اچھا کمنٹ دیا کہ اس مختصر سی زندگی، 40-50-60 لگا لیں، اتنی مختصر زندگی کی کوششوں پہ ہماری ان لمیٹڈ زندگی کا دار و مدار ہے. تو کتنے خوش قسمت ہیں جو اس تھوڑے سے وقت میں اچھے کام کر کے نہ ختم ہونے والا کام کریں. دیکھیں لوگوں کو کہا جائے نا 2 سال کام کر لو پھر تمہارا ساری زندگی کے لیے وظیفہ لگ جائے گا، تو میرا اللہ لوگ راتوں کو بھی جاگ کے کام کر لیں. ہے کیا 50-60 تو کس نے دیکھے، 30-40 ہی گزر جائیں خیر کے تو بڑے ہیں. اور اللہ کہتا ہے کہ اس دن پوچھا جائے گا بتاؤ کتنا رہے، اور تم کہو گے بہت تھوڑا. اب اس کے بعد انسان کے بولوں کی حفاظت کروائی جا رہی ہے، بہت اہم آیت ہے، اس کو ڈبل ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. ارے نبی میرے بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. عام اینکی پینکی باتیں نہ کیا کریں، ثانوی درجے کی باتیں نہ کیا کریں، عام لوگوں جیسی باتیں نہ کیا کریں، خوب نپی تلی بات کہا کریں. کیونکہ دراصل شیطان ہے یہ جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. بعض دفعہ انسان بات کہتا کسی اور نیت سے، اگلے کو کسی اور طرح جا کے لگتی ہے. تو انسان بات کرتا کسی اور سینس میں، لیکن وہ بات کسی اور طرح پہنچ جاتی ہے और फिर अक्सर लोगों को आपने देखा होगा रो रो के यकीन दिला रहे होते हैं, मैंने इसलिए नहीं कहा था, मैंने ऐसे नहीं कहा था। तो अल्लाह ताला पहले ही बता रहा है कि सोच के बात करो। देखिए हम जब बोलते हैं ना, ये ना सोचा करें कि मैंने ये बात बोलनी है, बोल दूं बस। साथ साथ ये भी सोचा करें कि अगले ने भी सुननी है, वो किस तरह सुनेगा। हालात देखिए, फिर आपको बहुत तफसीली सुनाया जा चुका है। जब हमने तरबियती सेशंस किए थे, एक दिन सिर्फ हमने अपनी गुफ्तगू पे बात की थी ना, कि किस तरीके से अपने बोलने पे देखो, क्यों बोलूं, कब बोलूं, कितना बोलूं, कैसे बोलूं, ये सारे क्यों लिख लें अपने बोलने के साथ। जब भी कोई बात करने लगे पहले पूछें, ज़रूरी है बोलूं, अब ठीक वक्त है, सही बंदे से करने लगी हूँ, और अगर ना बोलूँ तो क्या है। यकीन करें ये चार पांच क्यों क्या जो है ना, ये आपको आधी से ज़्यादा बातें करने से रोक लेंगे, क्योंकि बातों ही से शैतान दूसरों को आपसे दूर कर देता है। बदगुमानियाँ शौहर बीवी की देख लें, माँ बच्चे की देख लें, साथियों की देख लें, 90% बातों की वजह से होती हैं, और पीछे शैतान होता है जो बातों को बिगाड़ रहा होता है। रब्बुकुम आलमु बिकुम, तुम्हारा रब तुम्हारे हाल से ज़्यादा वाकिफ़ है, दूसरों को बताने की क्या ज़रूरत है। वो चाहे तो तुम पर रहम करे और चाहे तो तुम्हें अजाब दे दे। और ए नबी, हमने तुमको लोगों पर हवालेदार बनाकर नहीं भेजा कि तुम लोगों की बातों को तोलो, छोड़ दो उनकी बातों को, उनके ऊपर अल्लाह खुद क़यामत के दिन देख लेगा। व रब्बुका आलमु बिमन फिस्समावाति वल अर्दी, तेरा रब ज़मीन व आसमान की मखलूकात को ज़्यादा जानता है। हमने बाज़ पैगम्बरों को बाज़ से बढ़कर मरतबे दिए और हम ही ने दाऊद को ज़बूर दी थी। नबी सल्लम की नबूवत का मसला उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो रहा था, तो अल्लाह कह रहे हैं इनको कहने दो जो कहते हैं। अल्लाह को पता है कि उसने दाऊद को क्या दिया था और अब उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या देना है। नबी सल्लम से असल झगड़ा आपकी ज़ात का नहीं था बल्कि शिर्क का था। उनके बाप दादा के नाम से जो चीज़ें चल रही थी उसी के बारे में चोट पड़ती थी। अल्लाह के नबी की बातों से तो दुखी होते थे, इसीलिए अल्लाह ताला अपने नबी को कहते हैं, खुलिद उल्लसी नसअमदुम मिन दूनिही, इनसे कहो, पुकार देखो इन माबूदों को जिनको तुम अल्लाह के सिवा अपना कारसाज समझते हो, वो किसी तकलीफ़ को तुमसे हटा नहीं सकते ना बदल सकते हैं। जिनको ये लोग पुकारते हैं वो तो खुद अपने रब के हजूर रसाई हासिल करने का वसीला तलाश कर रहे हैं कि कौन इससे करीब तर हो जाए, और वो उसकी रहमत के उम्मीदवार और उसके अजाब से डरते हैं। लोग जिन बुजुर्गों का वसीला ढूंढते हैं, अल्लाह कहते हैं वो तो खुद अल्लाह की तरफ अपना कुर्ब ढूंढ रहे हैं। असल बात यह है कि किसी इंसान की कोई कुदरत नहीं है, और हकीकत यह है कि तेरे रब का अजाब है ही डरने वाली चीज़, इसलिए डरना चाहिए। वइन मिन क़रयतिन इल्ला नहनु मुहलिकूहा, और कोई बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम क़्यामत से पहले हलाक न कर दें या सख्त अजाब न दें, और ये अल्लाह के नविश्ते में लिखा हुआ है यानी तकदीर में। वमा मनअना अन नुरसिला बिल आयाती, और हमको निशानियां भेजने से नहीं रोका मगर इस बात ने कि इनसे पहले के लोग इनको झुटला चुके हैं। चुनाचे देख लो कि समूद को हमने एलानिया ऊँटनी ला कर दी और उन्होंने इस पर जुल्म किया। हम निशानियाँ इसीलिए तो भेजते हैं कि लोग इन्हें देख कर डरें। याद करो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमसे कह दिया था। देखिए अंदाज़ कितना प्यारा है, बीच में अल्लाह के नबी को पुकारा जा रहा है कि हमने इन लोगों को घेर रखा है, कि अल्लाह ने सबको घेरा हुआ है। निशानियाँ बहुत मांगते थे, अल्लाह के नबी भी कभी कभी फरमाइश कर देते थे कि अल्लाह ताला आपके लिए क्या मुश्किल है, बता दें सफ़ा पहाड़ को सोने का। तो अल्लाह वजह बता रहे हैं कि इसलिए नहीं ला रहे कि लोग निशानियाँ देख के भी नहीं मानते। और ये तो नबूवत की बात छोड़िए, ये हम अपनी अमली ज़िंदगी में बीसियों बार देख चुके हैं। कहीं कोई क्लास शुरू होती है, कई जगह होती रहती हैं अल्लाह के हुक्म से, अभी रिसेंटली भी 2 वीक पहले भी एक क्लास शुरू हुई है कहीं, तो कुछ लोगों से मशवरा लिया जाता है ना, अच्छा कैसे हो, हफ्ते में कितनी दफ़ा, महीने में कितनी, अच्छा कुछ लोग हैं ना वो बोल रहे हैं नहीं 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 हर हफ्ते बहुत ज़्यादा है, फिर तो बाउंड हो जाएंगे, नहीं 15 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, हफ्ते महीने में 1 दिन, दिस एंड दैट, और यकीन करें वो 1 दिन भी नहीं आते। और जो कहते हैं कि हर क्लास में आएंगे वो आए जाते हैं, आपकी मर्ज़ी, अच्छा वक्त कौन सा चाहिए, हाँ हाँ ये कुछ लोग होते हैं वो राय देने में बड़े आगे आगे होते हैं, उनकी पूछ के ठीक है, अच्छा ये दिन नहीं वो कर लेते हैं, कर लिया, अच्छा जी आप ये चाहते हैं वो नहीं, ये ठीक है, कर करा के सब करें, एक क्लास में भी नहीं उनको मैंने आज तक देखा, मेरी आंखों के सामने कई चेहरे घूम रहे हैं, एक क्लास में नहीं आए हुए, हालांकि जब राय ली थी तो हर बात में पेश पेश थे, नहीं 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 ऐसे नहीं ऐसे। अल्लाह कहते जितनी मर्ज़ी मानते जाओ ये फिर भी नहीं मानेंगे, इसलिए तौफीक मांगनी चाहिए, मजबूरियां तो होंगी हर एक के पास, तो फरमाया ये नहीं मानेंगे। और बात यह है कि ये लोग ऐसी चीज़ें कह सुनकर असल में अपने दिल की बातों को ज़ुबान पर लाते हैं। अब अल्लाह के नबी के साथ जो एक मौजज़ा हुआ था उसका इशारा है इधर आगे, वमा जअलना रुयल्लती अरैनाका इल्ला फितनतल लिन्नास, और जो कुछ भी अभी हमने तुम्हें दिखाया है इसको और उस दरख्त को जिस पर कुरान में लानत की गई है, हमने इन लोगों के लिए बस एक फितना बना कर रखा। हम तो इन्हें डरावे पर डरावा दिए जा रहे हैं मगर हर डरावा इनकी सरकशी में इजाफा करता है। नहीं मानेंगे, छोड़ दो इनको, अब इनको किस्सा सुनाओ। वैस कुलना लिल मलाइकति इस्जुदु ली आदम, यहाँ आदम का किस्सा इबलीस का क्यों आया? क्योंकि ये इबलीस ही रवैया इनका भी, उसने भी उजरे लंग पेश किए थे, इनकी भी आदत उजर वाली है। और याद करो जबकि हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो सब ने सजदा किया मगर इबलीस ने ना किया। कहा गया असजुद लिमन खलकता तीन, अक्ल इस्तेमाल की, कहने लगा क्या मैं उसको सजदा करूं जिसे तूने मिट्टी से पैदा किया, तकब्बुर। और साथ ही देखिए रीजनिंग, फिर वो बोला देख तो सही क्या ये इस काबिल था कि तूने इसे मुझ पर फजीलत दी। देखिए तकाबुल, सारे रवैये 1 2 3 करके लगाते जाएँ, जो पीछे सूरह आराफ में भी लगवाई थी कुछ चीज़ें, कि कैसे इबलीस इंसान को आज बिल्कुल अल्लाह के हुक्मों के आगे यही सब कुछ सिखाता है। लो मेरे ऊपर फलां को फजीलत दे दी, आदम को सजदा करो, ये क्या बात है? और अगर तू मुझे क़यामत के दिन तक मोहलत दे तो मैं तो पूरी नस्ल की बेखुनी कर दूंगा। मोहलत मांगी, ढील मांगी, अच्छा ऐसा हो जाए ना फिर ठीक है, ऐसा कर लूँ तो ठीक है। फिर साथ ही ऐलान भी कर दिया कि बस थोड़े ही लोग मुझसे बच सकेंगे। पता था ना उसको इंसान बहुत कमज़ोर है, अजूल है, कमज़ोर है, जल्दबाज है। अल्लाह ताला ने फरमाया अच्छा तू जा, इनमें से जो भी तेरी पैरवी करेंगे तुझ समेत इन सब के लिए जहन्नम ही भरपूर जजा है। और अल्लाह डरते नहीं है, इसलिए खुल के दावत दी जा, फिर बस तफ़ज़िस मन इस्तता था मिन हम बि सऊतिक वाजलिब अलैहिम बि कैलिक, तो जिस जिस को अपनी दावत से फिसला सकता है फिसला ले, इन पर अपने सवार और प्यादे चढ़ा ला, माल और औलाद में इनके साथ हिस्से लगा ले, और इनको वादों के जाल में फंसा, और शैतान के वादे एक धोखे के सिवा और कुछ भी नहीं। लेकिन अल्लाह को कितना यकीन था अपने बंदों पे कि मेरे बंदों पर तुझे कोई इक्तदार हासिल न होगा, और तवक्कुल के लिए तेरा रब ही काफ़ी है। दुआ कीजिए कि हम उन बंदों में आ जाएं जिनके बारे में अल्लाह ने कहा कि तेरा इन पर कोई इख्तियार नहीं होगा। असल बात, जिससे शैतान डरता है ना, बड़ा बड़ा लिख लें, तफसीर में भी आपको लिखाया था, इखलास। इखलास की काट नहीं खा सकता शैतान, मुखलस बंदा। हमारी नमाज़ें भी बार दफ़ा हमें शैतान के हाथों में ले जाती हैं, हमारा पढ़ना पढ़ाना लिखना लिखाना पैसा खर्च करना ये सारे काम करके भी बंदा भटक सकता है, लेकिन इखलास होगा ना तो फिर इंसान शैतान में नहीं आता। जैसे लकड़ी आग को देख के जलती है ना, इस तरह शैतान इखलास से जलता है। उसको इतना खौफ आता है मुखलस से, क्या कहता है बचाओ बचाओ बचाओ, मैं इसको नहीं बहका सकता, इसको पैदा करने की ज़रूरत है। फिर अल्लाह की कुदरत की कुछ चीज़ें, रब्बुकुमुल्लज़ी युस्जी लकुमुल फुल्क फिल बहरी, तुम्हारा हकीकी रब तो वो है जो समंदर में तुम्हारी कश्ती चलाता है ताकि तुम इसका फजल तलाश करो। हकीकत यह है कि वो तुम्हारे हाल पर नहायत मेहरबान है। जब समंदर में तुम पर मुसीबत आती है तो उस एक के सिवा जिनको तुम पुकारते थे वो सब गुम हो जाते हैं, वो करनी वाले, वो मुश्किल कुशा, वो सब जो है वो पल चले गए। मगर जब तुमको बचाकर खुशकी पर पहुंचा देता है तो तुम इससे मुंह मोड़ जाते हो। हमारा भी तो यही हाल है, मुश्किलात में जाए नमाज निकलने लगते हैं और जब मुश्किलात टलती हैं तो मुंह फेर जाते हैं, है ना। इंसान वाकई बड़ा नाशुक्रा है। अच्छा तो क्या तुम इस बात से बिल्कुल बेखौफ हो कि खुदा कभी खुशकी पर ही तुमको ज़मीन में धंसा दे या तुम पर पथराव वाली आंधी भेज दे और तुम इससे बचाने वाला कोई हमायती न पाओगे? और क्या तुम्हें इसका कोई अंदेशा नहीं कि खुदा फिर किसी वक्त समंदर में तुमको ले जाए और तुम्हारी नाशुक्री के बदले तुम पर सख्त तूफ़ानी हवा भेज कर तुमको गर्क कर दे और तुमको ऐसा कोई न मिले जो उससे तुम्हारे इस अंजाम की पूछगिछ कर सके? बहुत ही बड़ी बात है। आप देखिए कि जब समंदरों में इंसान फंसता है तो दुआएं करता है ना, फिर बच जाता है तो फिर ना शुक्री करता है, तो अल्लाह कहते हैं क्या भला तुम्हें अल्लाह ने समंदर में मारना है, खुशकी पे नहीं तुम पे कोई मुसीबत आ सकती? चलो ठीक है, खुशकी पे नहीं आती तो ये बताओ, क्या कभी तुमने फिर समंदर का सफर नहीं करना? फिर नहीं जहाज पे बैठना? फिर बताओ क्या होगा? तुम हर वक्त अल्लाह की नजर में हो। जमीन, खुशकी, तरी, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, इसलिए किसी जगह भी अल्लाह की नाफरमानी ना करो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हें बहुत प्यार से पैदा किया है। वलकद करमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्री वल बहर। ये तो हमारी इनायत है कि हमने बनी आदम को बुजुर्गी दी और इन्हें खुशकी और तरी में सवारियां अता की और इनको पाकीज़ा चीज़ों से रिस्क दिया और अपनी बहुत सी मखलूकात पर नुमाया फोकियत बख्शी। सच है कि नहीं? जितनी भी खूबसूरत से खूबसूरत मखलूकात देख लीजिए, इंसान उससे भी ऊपर है। कितनी अल्लाह ने इंसान को खूबी दी है, कितना हुसन दिया है, और अब याद करवाया जा रहा है कि सोचो होगा क्या। यौमन दुकुल्लौ नासिम बीमामिहिम। फिर ख्याल करो उस दिन का जबकि हम हर इंसानी गिरोह को उसके पेशवा के साथ बुलाएंगे। उस वक्त जिन लोगों को इनका नामे आमाल सीधे हाथ में दिया गया, वह अपनी ज़िंदगी का कारनामा पढ़ लेंगे और इन पर ज़र्रा बराबर भी जुल्म न होगा। और जो इस दुनिया में अंधा बनकर रहा, वो आखरत में भी अंधा ही रहेगा, बल्कि रास्ता पाने में अंधे से भी ज्यादा नाकाम। फैसला दुनिया में करना है, यहाँ अंधा रहना है तो वहां भी अंधा रहना पड़ेगा, अपने आमाल नामों के साथ उठाए जाएंगे। लेकिन लोग समझ नहीं पाते, अल्लाह के नबी को बहुत सताते थे, इसीलिए अल्लाह सुबहान तला फरमाते हैं, ए नबी, इन लोगों ने इस कोशिश में कोई कसर नहीं उठा रखी कि तुम्हें फितने में डाल दें और उस वही से फेर दें जो हमने तुम्हारी तरफ भेजी है। आज हमें भी तो लोग पूरी कोशिश करते हैं ना कि इस वही से हटा ले, लेकिन अल्लाह बचा ले तो फिर इंसान चलता रहता है। और वो ऐसा क्यों करते थे? ताकि तुम हमारे नाम पर अपनी तरफ से कोई बात घड़ो क्या? हाँ, ये भी जायज़ है, ये बुज़ुर्ग भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी कर लो, वो भी कर लो, फलां जो बुत है वो भी ठीक है और वो भी तुम्हारे कुछ काम करेगा। हाँ, अगर तुम ऐसा करते तो वो ज़रूर तुम्हें अपना दोस्त बना लेते। हाईलाइट कर लें इसको। लोग आज भी ऐसा कुरान पसंद करते हैं जिसमें ना उनकी शिर्क पे कोई चोट पड़े, ना रस्म और रिवाज पे चोट पड़े, ना तर्ज़ ज़िंदगी पे चोट पड़े, फिर बड़े खुश होंगे। और करीब न था कि हम अगर तुम्हें मजबूत न करते तो तुम इनकी तरफ झुक जाते। पीयर प्रेशर इतना होता है कि अल्लाह की मदद ना हो तो नबी भी उनकी तरफ झुक जाए, लेकिन अल्लाह बचा लेता है। और अगर ऐसा तुम करते तो हम तुम्हें दुनिया में भी दोहरे अजाब का मज़ा चखाते और आखिरत में भी दोहरे अजाब का, फिर हमारे मुकाबले में तुम कोई मददगार ना पाते। इसको तो बहुत बड़ा हाईलाइट करिए, क्योंकि जितना इंसान आगे जाता रहता है ना, उतना फिर गलती करेगा तो ज़्यादा जोर की खाएगा। ये ऐसे ही कि जैसे कोई ऊपर सीढ़ियों की तरफ चढ़ रहा है ना, 100 सीढ़ियाँ थी, चले 30 सीढ़ियों की बात कर लेते हैं, 30 सीढ़ियाँ थी, कोई पहली सीढ़ी से नीचे गिरेगा कुछ भी नहीं होगा, सीधे खड़ा हो जाएगा। पाँचवीं पे गिरेगा, हो सकता है घुटनों के बल गिरे, घुटनों पे थोड़ी सी चोट आ जाए। कोई 10वीं सीढ़ी से गिरेगा तो हो सकता है ठोड़ी भी टकरा के खून वाली हो जाए। 15वीं सीढ़ी से गिरेगा तो हो सकता है माथा भी टकरा जाए। जितना ऊपर जाके पलटेंगे दीन से, उतनी मुखी खाएंगे। तो दुआ कीजिए कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। और ये लोग तो इस बात पर भी तुले हुए हैं कि तुम्हारे कदम इस सरजमीन से उखाड़ दें और तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल करें, लेकिन अगर ऐसा वो करेंगे भी तो तुम्हारे बाद ये खुद यहाँ कुछ ज़्यादा दिन तक ना ठहरेंगे। कहते थे किसी तरह अल्लाह के नबी मक्का छोड़ जाएं, जान छोड़े हमारी, कहा चले जाते हैं, मर भी जाएंगे, दुनिया से भी चले जाएंगे, तो क्या तुम वहीं रहोगे? धमकी थी इसमें मक्का वालों को कि नबी के जाने के बाद अब तुम ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहोगे। और ये क्या है? सुन्नत मन कद अरसलना कबलक मिर रसुलिना। ये हमारा मुस्तकिल तरीक़ाकार है जो उन सब रसूलों के मुकाबले में हमने बरता जिन्हें तुमसे पहले हमने भेजा, और हमारे तरीक़ाकार में तुम कोई तब्दीली न पाओगे। करो क्या? इतनी मुखालफतें, इतनी लोगों की तरफ से तुम पर बातें हो रही हैं, तो दिल को ठंडा करने के लिए अकीम सलात लिदुलूक शम्स इला गसक लैल इला गसक लैल व कुरआन अल फज्र। नमाज कायम करो जवाल आफ्ताब से लेकर रात के अंधेरे तक, और फजर के कुरान का भी इख्तमाम करो, کیونکہ فجر کا قرآن مشہود ہوتا ہے، حاضر کیا جاتا ہے، فرشتے گواہ بنتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے ہر نیکی اور ہر نماز کے گواہ ہیں، لیکن خاص طور پہ فجر کی نماز کی قرأت پر ان کی گواہی کیسے ہے کہ فرشتے اس کو سنتے ہیں. اسی طرح فرشتوں کی تبدیلی کا موقع ہوتا ہے. رات کے اعمال لینے والے فرشتے فجر کی نماز کی ابتدائی وقت میں آسمان پہ جاتے ہیں، اور دن کے اعمال لکھنے والے فرشتے فجر کے وقت آ جاتے ہیں. اس وقت فرشتوں کے جو چینج ہوتی ہے اس کا ذکر کیا گیا اور کہا کہ ساتھ ہی کرو کیا، تہجد پڑھو. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ آپ کے لیے نفل عبادت ہے. یہاں نفل سے مراد کیا ہے؟ ایکسٹرا ہے، یعنی دوسروں کو تو نہیں تھی لازم لیکن آپ کو لازم ہے. اور بعید نہیں کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز کر دے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی تہجد کی عادت ڈال دے، اور تہجد سے مقام محمود یعنی تعریف کا مقام ملتا ہے. جو راتوں کو تہجد پڑھے گا نا، اللہ دن میں اس کی تعریف کروائے گا. شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، دکھاوا نہ ہو. اور پھر بڑی پیاری دعا، ہجرت کا سفر آنے سے پہلے ہی سکھا دیا. یہ بالکل اب وہ دن ہے کہ اب ہجرت کی تیاریاں ہونے والی ہیں. وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا، اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال. کیا مطلب ہے؟ کہ جہاں رہوں حق کے ساتھ رہوں، حق پر رہوں، حق کی خدمت کروں، اور اللہ ہی کے دین کا چرچا کرتا رہوں، اور سب سے بڑھ کر کیا کہ اپنی طرف سے میرے ساتھ ایک اقتدار کو مددگار بنا دے، اچھے ساتھی مجھے ہر جگہ عطا کرتا رہے. جو برائیوں کا اور گندگیوں کا اور فحاشی کا سیلاب ہے اس کو بند باندھنے کے لیے اچھے ساتھی دے دے. وَقُلْ جَعَلَ الْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ابھی ہجرت ہوئی کوئی نہیں تو دعا سکھائی، اور ہجرت کے بعد 8 سال بعد جو موقع آیا وہ پہلے ہی لکھ دیا کہ اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. اور باطل تو مٹنے ہی والا ہے، حالانکہ اس وقت حالات یہ تھے کہ جان کے لالے پڑے تھے، لیکن اللہ پہلے سے خوشخبریاں دینی شروع کر دیتا ہے. یہ اللہ کی سنت ہے. کوئی تبدیلی آنی ہوتی ہے نا زندگی میں تو اللہ تعالیٰ اس کی ہوائیں چلا دیتا ہے. انسان کو نہیں پتہ چلتا لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اشارے دے رہا ہوتا ہے. ہجرت مدینہ اصل میں بڑی تکلیف دہ حالت تھی اس وقت. کوئی پسند نہیں کر رہا تھا کہ اپنے گھر چھوڑ کے جائے، لیکن اس کے پیچھے ایک خیر چھپی تھی کہ وجال حق وزحق الباطل. بس اب انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی ذاتی زندگی میں کچھ مشکلات میں ڈالتا ہے تاکہ خیر اس کے لیے دین کا ذریعہ بنے، اس کی یہ تکلیف اس کے دین کے فائدے کا ذریعہ بنے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ اکبر، ہم اس قرآن کو نازل کرنے کے سلسلے میں جو کچھ نازل کر رہے ہیں وہ ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کوئی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. اور انسان کتنا تھوڑ دل ہے، اس کو بھی ہائی لائٹ کر کے نیچے اپنا نام ہی لکھ لیں. جہاں بھی لفظ انسان آئے نا اپنا نام لکھ لیں، پھر دیکھیں کیا میں ایسی تو نہیں ہوں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ، انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ بہت اکڑتا ہے اور پیٹ مور لیتا ہے. کس سے؟ اللہ کے دین کے کام سے. مصروف بہت ہے، اپنے گھر میں بڑا کام ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دو چار ہونے لگتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، جب ہم بہت دنیا میں مشغول ہوتے ہیں تو اللہ سے پیچھے ہوتے ہیں. نمازیں ہی مثلاً چھوڑ دی، پھر ڈپریشن ہوا ہے، پھر بیماریاں پڑ گئیں، ہائے بے نمازی کا دل تو ظاہر ہے کہ دکھی ہوگا. تو پھر انسان کہتا ہے اب لاؤ کسی سے جا کے پوچھیں کہ اس کا کیا علاج ہے. پھر بھی کہتے ہیں کوئی وظیفہ ہی بتا دو جس کو ہم ادا کر لیں. کوئی بات نہیں. کل کل نہیں عمل والا شاکلتی ہی، اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو ہر ایک اپنے اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے، اب یہ تمہارا رب ہی جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. سبحان اللہ، تم نہ بحثوں میں پڑو کسی کو نہ غلط کو، تم اپنا کام کرتے جاؤ، جو کرتا ہے کوئی کرنے دو. پھر وہ سوال جس کی بنیاد پہ نہ صرف یہ کہ یہ آیتیں بلکہ سورت القحف نازل ہوئی، उसमें से एक सवाल, वयसअलूनका अनिर रूह, कुलिर रूहु मिन अम्री रब्बी, ये लोग तुमसे रूह के मुतल्लिक पूछते हैं, कहो ये रूह मेरे रब के हुक्म से आती है, मगर तुम लोगों ने इल्म से बहुत ही कम हिस्सा पाया। अरे मोहम्मद, अगर हम चाहें तो वो सब कुछ तुमसे छीन ले जो हमने वही के ज़रिए से नाजिल किया आपकी तरफ, फिर तुम हमारे मुकाबले में कोई हमायती ना पाओगे जो इसे वापस दिला सके। ये तो जो कुछ तुम्हें मिला है तुम्हारे रब की रहमत से मिला है, हकीकत यह है कि इसका फजल तुम पर बहुत बड़ा है। कह दो कि अगर इंसान और जिन सब के सब मिलकर इस कुरान जैसी कोई चीज़ लाना चाहें तो न ला सकेंगे, चाहे वो सब एक दूसरे के मददगार ही क्यों ना हो। यहाँ लफ्ज़ रूह आया और उसके फ़ौरन बाद कुरान की बात है, तो रूह का लफ्ज़ कुरान पाक में तीन मुख्तलिफ़ मानों में आता है। एक तो वही जो सोल है हमारी बॉडी में, सोल या स्पिरिट के मानों में, जिसम से रूह निकल जाती है तो बंदा मुर्दा हो जाता है और उसको कब्र में डाल आते हैं। इसी तरह यहाँ जो रूह का लफ्ज़ है ये कुरान पाक की वही के लिए आया है कि जब कुरान जिंदगियों से निकल जाता है तो जिस्म मुर्दा लाशें बन जाते हैं, और इसी तरह रूह का लफ्ज़ जिब्राइल अमीन के लिए आता है। अल्लाह ताला ने तीनों ईमानी यहाँ दे दिए, जब भी जिब्राइल आते हैं और जब भी कुरान की वही आती है और जब भी किसी इंसान के अंदर रूह पैदा होती है, नहीं बच्चा पैदा होने वाला होता है, ये सब अल्लाह का हुक्म है। आपने कह दिया था लोगों को कि वही आ जाएगी, मैं बता दूंगा, लेकिन नहीं आई, अल्लाह के हुक्म से आती है, किसी के इख्तियार में नहीं। इसलिए अल्लाह के फ़ैसलों पर रहना चाहिए राज़ी। फिर अल्लाह ताला इन सारी बातों में तस्करा करने के बाद कि इतना प्यारा कुरान जिसको जिन और इंसान नहीं बदल सकते, इतना प्यारा है, बदल लो, जाओ कर ले आओ इससे कोई मुख्तलिफ चीज़, लेकिन नहीं लाते तो फिर मान जाओ कि वलकद सर्रफ़ना लिन्नासिफ़ी हाज़ल कुरआन मिन कुल्ली मसल, हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया है मगर अक्सर लोग इनकार पर ही जमे रहे, और उन्होंने कहा हम तेरी बात न मानेंगे जब तक तू हमारे लिए ज़मीन को फाड़ कर एक चश्मा जारी कर दे। अब ये देखिएगा बच्चों वाले बहाने, इधर से क्यों पकड़ा, इधर से क्यों पकड़ा। अल्लाह के नबी ने कभी नहीं कहा था कि मैं कोई जादूगर हूँ या मेरे पास कोई बहुत सारी ताकतें हैं, कहा था कुरान को मानो। और ये देखिए कैसे मौजज़ात पे आ गए कि अच्छा ज़रा ज़मीन से चश्मे निकाल दो, या तेरे लिए खजूरों और अंगूरों का एक बाग पैदा हो और तू इसमें नहरें रवां कर दे, या तू आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हमारे ऊपर गिरा दे जैसा कि तेरा दावा। हालांकि अल्लाह के नबी का कोई दावा नहीं था, आप तो यही कहते थे क़यामत के करीब आसमान फटेगा, तो आपको ताने देते थे, अच्छा जो तू कहता ना ये करके दिखा दे, या फिर खुदा को और फरिश्तों को रूबरू हमारे सामने ले आ, या तेरे लिए सोने का एक घर बन जाए, या तू आसमान पर चढ़ जाए और तेरे चढ़ने का भी हम यकीन ना करें जब तक कि तू हमारे ऊपर एक ऐसी तहरीर ना उतार लाए जिसे हम पढ़ें। ये थे उनके उज़र कि ये कर दो, वो कर दो, कर दो, हम फिर भी नहीं मानेंगे तो फिर इतना कुछ करने की ज़रूरत क्या है। कुल सुबहान रब्बी हल कुंतु इल्ला बशर रसूला, इतने लंबे मुतालबे, जवाब में एक ही जुमला है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो पाक है मेरा रब, क्या मैं एक पैगाम लाने वाले इंसान के सिवा और भी कुछ हूँ, यानी मेरे पास नहीं है ये मौजज़े, मैं तो सिर्फ पैगाम देने आया हूँ। और लोगों का हाल क्या, इसको हाईलाइट कीजिएगा, वमा मनन नासई यूमिनु इस जाहुमुल हुदा, लोगों के सामने जब कभी हिदायत आई तो इस पर ईमान लाने से इनको किसी चीज़ ने नहीं रोका मगर इनके इस कॉल ने कि क्या अल्लाह ने बशर को पैगंबर बनाकर भेज दिया। ये था उज़र जो लोगों को हिदायत से दूर करता है, भाई बशर था कि फरिश्ता था, तुम्हें क्या, तुम तो हिदायत लो। आज भी लोग रसूलों के बशर होने या ना होने पर झगड़े करके कुरान से रुके रहते हैं, भाई आपकी बला से वो नबी थे, बशर थे, क्या थे, आपको तो वो हिदायत की किताब देने आए, उसको ले लीजिए। पैकेज आ गया, वो DHL पे आया, FedEx पे आया, देने वाला गोरा था, काला था, औरत थी, मर्तल, आप पैकेज ले लीजिए, नहीं लेना तो जाइए फिर झगड़े करते रहिए, हिदायत आपके हाथ से चली जाएगी। बेसरो पैर की बहसें लोगों को असल मकसद से रोक लेती हैं। इनसे कह दो, कहते थे ये नबी बशर क्यों है, फरिश्ता होता, कुल लौ काना फिल अर्दि मलाइका, इनसे कहो अगर ज़मीन में फरिश्ते इत्मीनान से चल फिर रहे होते तो हम ज़रूर आसमान से किसी फरिश्ते ही को इनके लिए पैगंबर बनाकर भेजते। साथ बात है ना, फिर वो इनको बताता कि ये करो वो ना करो। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कह दो कि मेरे और तुम्हारे दरमियान बस एक अल्लाह ही की गवाही काफ़ी है, वह अपने बंदों के हाल से बाखबर है और वो सब कुछ देख रहा है। अल्लाह का फैसला के बड़ी ज़बरदस्त आयत पे नस्ब हो रहा है, हाईलाइट कर लीजिए, वमन यहदिल्लाहु फहुवल मुहतद, जिसको अल्लाह हिदायत दे वही है हिदायत पाने वाला। कोई बंदा किसी को नहीं खींच सकता, दुआ कर सकता है, तड़प सकता है, बुला नहीं सकता। और जिसे वो गुमराही में डाल दे तो इसके सिवा ऐसे लोगों के लिए तो कोई हामी और मददगार न पाएगा। इन लोगों को हम क़यामत के रोज़ ओंधे मुंह खींच कर लाएंगे, जैसे नकेले डाल के इनको हम लाएंगे, अंधे गूंगे और बहरे, और इनका ठिकाना जहन्नम है। जब कभी इसकी आग धीमी होने लगेगी तो हम इसे और भड़काएंगे, क्योंकि ज़ालिक जज़ाउहुम बिअन्नहुम कफरू बिआयातिना, ये बदला है इनकी इस हरकत का कि इन्होंने हमारी आयात का इनकार किया और कहा कि क्या हम जब हड्डियां और खाक होकर रह जाएंगे तो क्या नई तख्लीक में पैदा किए जाएंगे। पहली आयत भी आज के इस रुब की यही थी और आखिरी भी यही बन रही है। ना मानने के सो बहाने, मर के कैसे जिएंगे, क्या होगा, कैसे होगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह मानने वाला दिल दे, इनकार करने वाले ना, इतने अक्लमंद ना हो कि बात में से बात निकाल के खुश हों कि हमने कितना बेबस कर दिया। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अश्हदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। وصلى الله تعالى خير خلقه واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين।